اس نے اپنے بیٹے یسوع مسیح میں بلکہ مسیح میں ساری چیزیں ہمیں مفت دی ہیں۔ اے خداوند، ہم تیرے شکر گزار ہیں اس شرف کے لیے جو تو نے ہمیں اس عظیم اور اعلیٰ قربانی کے وسیلے بخشا ہے جو یسوع نے ہماری خاطر کلوری پر دی، جس کے وسیلہ سے ہماری دوبارہ تیرے ساتھ رفاقت اور صلح ہوئی اور تیرے رحم کو پایا، اور ہمارے پاس یہ تسلی بھی موجود ہے کہ تیرے کلام میں لکھا ہے، اگر تم مجھ میں قائم رہو اور میری باتیں تم میں قائم رہیں تو تم جو چاہو مانگو وہ تمہارے لیے ہو جائے گا۔ اب ہم اس کے لیے شکر گزار ہیں اور دعا کرتے ہیں تو ہمیں ایمان دے تاکہ ہم اس پر اپنے پورے دل و جان سے یقین کر سکیں۔ اب اے خداوند، ہونے دے کہ ہم دن کی ساری مشقت اور زندگی کی فکریں ایک طرف رکھ دیں، اور ہر طرف سے، ایک دربان سے لے کر پاسٹر تک، سب تیرے پاس آ جائیں۔ اب ہمارے ذہنوں میں کچھ نہ رہے مگر صرف بڑے احترام کے ساتھ سننے کے لیے انتظار کرنا ہو جو کہ روح القدس ہم سے کلام کرنا چاہتا ہو، تاکہ ہم سب یہاں اکٹھے بیٹھ سکیں اور کچھ مزید اپنی بلائی کے لیے تجھ سے حاصل کر سکیں۔ کیونکہ اے خداوند، یہ حقیقت ہے کہ ہم اس گرمی میں اس لیے ہیں۔ اپنے زندہ کلام کے وسیلہ سے بول، اور ہونے دے کہ زندہ کلام ہم میں بس جائے اور ہم میں قائم ہو جائے، تاکہ ہم اس دنیا کے ہم شکل نہ بنے بلکہ اپنی روح کے نئے ہو جانے کے بعد خدا کے بیٹے کے ہم شکل بنے۔ ہو ہمارے دل جھوم اٹھتے ہیں جب ہم یہ سوچتے ہیں، اور ہماری روحیں شادمانی سے لبریز ہو جاتی ہیں جب ہم یہ جانتے ہیں کہ ہم خدا کے بیٹے اور بیٹیاں بن سکتے ہیں۔ ہم اس کی آمد ثانی کے بالکل کنارے پر کھڑے ہیں، اور ساری قومیں اور سلطنتیں ہمارے پاؤں تلے کانپیں گی، اور دنیا کی ساری چیزیں غائب ہو جائیں گی، لیکن ہم جانتے ہیں کہ کسی دن وہ آئے گا اور ہمیں ایسی بادشاہی میں لے جائے گا جس کا کبھی اختتام نہ ہوگا یا جس کو کبھی جنبش نہ ہوگی۔ اور ہم یہ سوچتے ہیں کہ اب ہی ہم اس بادشاہی کے باشندے ہیں۔ اے خدا، آج اپنے کلام کے پانی سے دھو، اور رول کچھ کے وسیلہ سے ہمارے کانوں اور دلوں کا ختنہ کر۔ ہم یہ اس کے نام اور اس کے جلال کے لیے مانگتے ہیں، آمین۔ آج صبح میں اس مضمون تک رسائی حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ اگر یہ ایک شفا عبادت بھی ہوتی تو بھی میں کچھ مختلف بولنے جا رہا ہوں، لیکن ہم نے اعلان کیا تھا کہ دعائیہ کارڈ 8 بجے سے 8:30 بجے تک یا 9 بجے تک تقسیم کیے جائیں گے، اور مجھے تھوڑی دیر پہلے بلی نے گھر آ کر بتایا تھا۔ اس نے کہا بڑی مشکل سے کوئی ایک دو شفا کے لیے آئے تھے، اس لیے اس نے دعائیہ کارڈ نہیں بانٹے تھے۔ بس ہم لیں گے، میرا خیال ہے کلیسیا کی اصلاح کے لیے یہ متن لوں گا، اور میں آج اس عنوان پر بولنا چاہتا ہوں، دنیا سے دھوکہ کھائی ہوئی ایک کلیسیا۔ میں چاہتا ہوں قضات کی کتاب کے 16 باب کی 10 آیت سے شروع کرتے ہیں۔
And Delilah said unto Samson, Behold, thou hast mocked me.
تب دلالہ نے سمسون سے کہا، دیکھ تو نے مجھے دھوکہ ہی دیا اور مجھ سے جھوٹ بولا، اب تو ذرا مجھے بتا دے کہ تو کس چیز سے باندھا جائے۔ اس نے اس سے کہا، اگر وہ مجھے نئی نئی رسیوں سے جو کبھی کام میں نہ آئی ہوں باندھے تو میں کمزور ہو کر اور آدمیوں کی طرح ہو جاؤں گا۔ تب دلالہ نے نئی رسیاں لے کر اس کو ان سے باندھا اور اس سے کہا، اے سمسون، فلسطی تجھ پر چڑھائے۔ اور گات والے اندر کی کوٹلی میں ٹھہرے ہوئے تھے۔ تب اس نے اپنے بازوؤں پر سے دھاگے کی طرح ان کو توڑ ڈالا۔ سو دلالہ سمسون سے کہنے لگی، اب تک تو نے مجھے دھوکہ ہی دیا اور مجھ سے جھوٹ بولا، अब तू बता दे कि तू किस चीज से बन सकता है। उसने उससे कहा, अगर तू मेरे सर की सातों लटें ताने के साथ बुन दे। तब उसने खोंटे से उसे कसकर बांध दिया और उससे कहा, ऐ समसून, फलस्ती तुझ पर चढ़ाए। तब वह नींद से जाग उठा और बल्ली के कूंटे को ताने के साथ उखाड़ डाला। फिर वो उससे कहने लगी, तू क्यों कर कह सकता है कि मैं तुझे चाहता हूँ, जबकि तेरा दिल मुझसे लगा नहीं। तूने तीनों बार मुझे धोखा ही दिया और बताया कि तेरी शाहजोरी का भेद क्या है, और ना बताया कि तेरी शाहजोरी का भेद क्या है। जब वो उसे रोज अपनी बातों से तंग और मजबूर करने लगी, यहाँ तक कि उसका दम नाक में आ गया। तो उसने अपना दिल खोल कर उसे बता दिया कि मेरे सर पर उस्तरा नहीं फिरा है, इसलिए कि मैं अपनी माँ के पेट ही से खुदा का नजीर हूँ। सो अगर मेरा सर मुंडाया जाए तो मेरा जोर मुझसे जाता रहेगा और मैं कमजोर होकर और आदमियों की तरह हो जाऊंगा। जब दलाइला ने देखा कि उसने दिल खोल कर सब कुछ मुझे बता दिया है, तो उसने फलस्तियों के सरदारों को कहला भेजा कि इस बार और आओ, क्योंकि उसने दिल खोल कर सब कुछ मुझे बता दिया है। तब फलस्तियों के सरदार उसके पास आए और रुपए अपने हाथ में लेते आए। तब उसने उसे अपने जानों पर सुला लिया और एक आदमी को बुलाकर सातों लटें जो उसके सर पर थी मुंडा डाली और उसे अजियत देने लगी और उसका जोर उससे जाता रहा। फिर उसने उससे कहा, ऐ समसून, फलस्ती तुझ पर चढ़ाए। और वो नींद से जागा और कहने लगा, मैं और मर्तबा की तरह बाहर जाकर अपने आप को झटकूंगा। लेकिन उसे खबर ना थी कि खुदावंद उससे अलग हो गया है। अब मैं मतन के लिए इस हवाले को भी पढ़ना चाहता हूँ, जो मुकाशवा की किताब के दूसरे बाब में पाया जाता है। 21वीं आयत से शुरू करके 23वीं आयत तक पढ़ेंगे। मैंने उसको तोबा करने की मोहलत दी, मगर वो अपनी हरामकारी से तोबा करना नहीं चाहती। देख, मैं उसको बिस्तर पर डालता हूँ और जो उसके साथ जना करते हैं, अगर उसके से कामों से तोबा ना करें तो उनको बड़ी मुसीबत में फंसाता हूँ। और उसके फर्जंदों को जान से मारूंगा और सब कलीसियों को मालूम होगा कि गुर्दों और दिलों का जांचने वाला मैं ही हूँ, और मैं तुम में से हर एक को उसके कामों के मुआफिक बदला दूंगा। खुदावंद अपने कलाम के पढ़े जाने पर अपनी बरकत फरमाए। समसून ने भी अपना आगाज कलीसिया के अजीम कामों की तरह ठीक किया था और वह दुरुस्त सिम्मत की जानिब गामजन था। जब उसने अपना काम शुरू किया तो वो एक ताकतवर और बहादुर आदमी कहलाया। उसने खुदावंद की खिदमत का आगाज उसकी बातें मानने और उसके हुक्मों पर चलने से किया, और ये बात किसी हद तक कलीसिया पर लागू होती है। इसका आगाज, जैसे कि हम कहेंगे, जैसे कि दुनिया कहती है, ये एक दुरुस्त कदम का आगाज था। उसने खुदावंद के हुक्मों की ताबेदारी की थी, और जब तक समसून खुदावंद के पीछे चला तो खुदावंद ने भी समसून से काम लिया। क्योंकि खुदावंद किसी को भी बुलाकर उससे काम ले सकता है जो उसकी पैरवी में ताबेदारी करता है, क्योंकि ये खुदा का काम है। लेकिन जब हम खुदावंद की बातों से एक तरफ मुड़ जाते हैं तो फिर मजीद खुदावंद हमें इस्तेमाल नहीं करता। लेकिन जब हम साबित कदमी से उसके हुक्मों की पैरवी करते हैं, जब हम बाइबल के तमाम औराक के साथ खड़े होकर और जो कलाम में लिखा है उसके मुताबिक इबादत करते हैं, روح اور کلام مقدس کی سچائی کے ساتھ پرستش کرتے ہیں تب خدا کسی شخص کو بھی استعمال کر سکتا ہے. لیکن جب وہ کسی ایک خیال پر اس سے مڑ کر کسی اور کی پیروی کرتے ہیں تو پھر خدا ایسے شخص کو مزید استعمال نہیں کر سکتا.
So Samson makes a very outstanding
پس سمسون آج کی کلیسیا کی ایک بہت نمایاں نمائندگی ہے. جب کلیسیا کا آغاز ہوا تو خدا نے اسے استعمال کیا کیونکہ اس وقت کلیسیا بڑی جان فشانی کے ساتھ خداوند کے حکموں پر چلتی تھی. اس کے سارے انصاف اور اس کی شریعت اور اس کے سارے حکموں کی پیروی کرتی تھی اور خدا کلیسیا کے ساتھ تھا. لیکن ایسا لگتا ہے کہ کلیسیا میں کوئی نہ کوئی جگہ کمزور رہی. یاد رکھیں ہم کسی پکنک پر نہیں ہیں بلکہ ہم ایک جنگ کے میدان میں ہیں. بہت سارے لوگ یہ سوچتے ہیں کہ جب وہ ایک مسیحی بن جاتے ہیں تو بس یہی سب کچھ کرنے کی ضرورت تھی اور یہ ہمیشہ کے لیے طے ہو گیا ہے. وہ سوچتے ہیں ایک مسیح ہوتے ہوئے سب کچھ آسان ہے. آپ اس قسم کی باتوں کو اپنے ذہن میں مت آنے دیں کیونکہ میں ایک کشتی لڑنے کے لیے ایک مسیحی بنا ہوں, ایمان کی اچھی کشتی لڑنے کے لیے. میں ایک مسیح اس لیے بنا ہوں تاکہ جنگ لڑنے والوں کی قطار میں کھڑا ہو سکوں.
We are Christian soldiers. And we've got to be trained.
ہم مسیحی سپاہی ہیں اور ہم نے تربیت پائی ہے اور اس کو حاصل کیا ہے اور دشمن کے سارے حربوں سے واقف ہیں, یہ جانتے ہوئے کہ کیسے دفاع کرنا ہے اور یہ جانتے ہوئے کہ کیسے جنگ کرنی ہے. اور یہ ہم صرف تب ہی کر سکیں گے جب رول کچھ ہم پر ظاہر کرے گا. جب ہم جنگ پر جاتے ہیں تو دوسری قوم جو طریقے بتاتی ہے ان کے ساتھ ہم جنگ نہیں کرتے. لیکن ہمیں تو اپنے ہی ڈھنگ اور سوچ کے مطابق جس طرح رول کچھ ہماری رہنمائی کرے جنگ کرنی ہے, اور وہ کیا ہی طریقے ہمیں بتائے گا کیونکہ وہ مسیحی فوج کا سپہ سالار ہے.
سیمسن ڈیڈ گڈ, ہی واز اے گریٹ مین.
سمسون ایک عظیم شخص تھا اور اس نے اچھے کام کیے تھے جبکہ اس نے اس کا آغاز کیا, بلکہ ہم یہ کہیں گے اس کے ارد گرد پر نکلنے شروع نہ ہوئے تھے جب تک اس نے اپنی سرحد سے باہر جانا شروع نہیں کیا تھا. اور اسی طرح کلیسیا بھی ٹھیک چل رہی تھی جب تک اس نے اپنی سرحد سے باہر جانا شروع نہیں کیا تھا. سمسون نے پیار کا ڈونگ رچانا شروع کر دیا تھا, اور اس نے پیار کا ڈونگ کسی اسرائیلی لڑکی سے نہیں بلکہ یہ پیار کا ڈونگ ایک فلسطینی لڑکی سے رچانا شروع کر دیا تھا. اور یہ کسی حد تک ایسا ہی ہے جیسا کلیسیا نے کیا.
Make love with its own. It got off after unbelievers.
اس نے اپنے بھائیوں سے تو کبھی پیار کرنا شروع نہیں کیا لیکن بے ایمانوں کے پیچھے لگ گئی اور بے ایمانوں کے ساتھ پیار کا ڈونگ رچانا شروع کر دیا. یہیں پر ہم نے بڑی بھول کی, بلکہ ایک بہت بڑی غلطی کی جب کلیسیا نے وہ کام شروع کر دیے جو ٹھیک نہیں تھے. اس نے سمسون کی طرح بری رفاقت اپنا لی. سمسون جب تک وہ خدا کے لوگوں کی رفاقت میں رہا اس نے سب ٹھیک کیا, لیکن جب اس نے بری رفاقت سے محبت کا ڈونگ رچایا تب وہ مصیبت میں پڑ گیا. اور یہی طریقہ کلیسیا نے بھی اختیار کیا. جب کلیسیا بڑی تعظیم سے پیروی کرتی اور ہر روز روح القدس کی رہنمائی میں اس کے پیچھے چلتی تھی تو خدا نے ان کو بڑی برکت دی تھی اور کلیسیا کے درمیان معجزات, نشان اور عجیب کام ہوتے تھے. लेकिन जब उसने दुनिया के साथ बुरी रफाकत रखना शुरू कर दी, तो ये बदतरीन कामों में से एक था। और जो पहला काम उसने किया वो मुनज्जम होना था। उन्होंने दूसरे ईमानदारों के साथ रफाकत खत्म कर दी, क्योंकि उन्होंने देखा था कि कौमें मुनज्जम हैं। लेकिन ये अजीम खुशखबरी किसी एक कौम या लोगों की जागीर नहीं है, ये तो उसके लिए मखसूस है जो कोई भी इसमें आना चाहेगा। सब कौमें कराबती, अहले लुगत और सब लोग हैं। खुदा ने कभी भी इसके लिए कोई हदबंदी की लकीर खींचने का ख्याल हमें नहीं दिया। लेकिन इंसान चाहता है कि उनके साथ मुवाजना करके उनकी नकल करे और दुनिया की तरह करना चाहता है वो काम जो वो करते हैं, उसी तरह कामयाब होना चाहता है जैसे वो कामयाब हुए हैं। हम दुनिया जैसे काम करके कभी भी अपने लिए कामयाबी हासिल नहीं कर सकते। हम कामयाबी तब भी हासिल कर सकते हैं जब खुदा की शरीयत को माने और उसके तरीके के मुताबिक काम करें। दुनिया के नमूने पर चलकर हम कभी कामयाबी हासिल नहीं कर सकते। टेलीविजन के जरिए सिगरेट की कंपनी के लिए बहुत बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। बियर और शराब वालों को भी कामयाबी की बड़ी भीड़ टेलीविजन की मदद से हासिल हुई है, मगर ये इस बात का निशान नहीं है कि कलीसिया को भी कामयाबी टेलीविजन से मिलेगी। कलीसिया की कामयाबी खुशखबरी की मुनादी करने और खुदा की कुदरत और रूह को जाहिर करने में है। हम ये नहीं कह सकते कि सिगरेट कंपनी के लिए और दूसरी कंपनियों के लिए टेलीविजन ने ऐसा ऐसा किया है। हमारे पास कोई ऐसा हवाला नहीं है जिससे हम अपने आप का मुवाजना उन लोगों के साथ करें, और जब तक हम ऐसा करते रहेंगे तो हो सकता है हम बहुत से लोगों को बढ़ा लें, मगर ये वो नहीं है जिसके लिए खुदा ने हमें मखसूस किया है। हम सोचते हैं क्योंकि हमारे पास हर रंग, आला चीजें और बड़ी तंजीम है, और यही वजह है कि हर तरफ रंग रलियां हो रही हैं, और यही तो कामयाबी है। अगर रूहानी एतबार से कहूं तो हम हर रोज अपने ही कदमों में मर रहे हैं। अगर हम आज सुबह 1 करोड़ मजबूत खड़े हों और रुल कुछ हमारे साथ ना हो, तो हम 10 खड़े हों जिनके साथ रुल कुछ हो तो वो ज्यादा मजबूत होंगे। हम अपना मुवाजना दुनिया से नहीं कर सकते। और सबसे पहली बात ये हुई कि कलीसिया ने अपने आप को मुनज्जम कर लिया। पहली तंजीम कैथोलिक कलीसिया थी और फिर लूथरन कलीसिया आई। जब उन्होंने कैथोलिक कलीसिया को मुनज्जम करके एक तंजीम बना ली, तो फिर एक दिन ये आवाज आई, समसून फलस्ती तुझ पर चढ़ाए, और समसून ने कैथोलिक कलीसिया की रस्सियों को तोड़ डाला, और फिर मार्टिन लूथर एक तंजीम के साथ आया। फिर उन्होंने फिर कलीसिया को रस्सियों से बांध दिया जैसे दलाइला ने किया था, और उनका आगाज हुआ वो आदमी जिनको खुदा ने बुलाया हो, वो आदमी जिनको रूल कुछ ने बुलाहट दी हो। हो सकता है वो अपनी एबीसी ना जानते हो, लेकिन मसीह को जानते थे। मगर उनकी बजाय कलीसिया में स्टाइलिश फैशन वाले और सियासी तकरीर करने वाले आ गए, और फिर उन्होंने अपने मुनादों को डॉक्टर की डिग्री देना शुरू कर दी, और फिर इल्मे इलाहियात की डिग्री लेना जरूरी हो गया। ये एक और रस्सी थी जिससे कलीसिया को बांधा गया। आदमियों को जाकर सेमिनरी की तालीम लेनी पड़ती ताकि उन्हें एक अच्छा आलिम बनाने की कोशिश की जाए, ताकि कलीसियाएं शेखी मार सके कि हमारे पास्टर के पास इल्मे इलाहियात की डिग्री है। और उन्होंने क्या किया, एक दूसरे से बढ़कर इल्म हासिल करना शुरू कर दिया। ठीक है, इसकी खुदा की नजर में कोई अहमियत नहीं, और किसी शख्स को ये दुनियावी इल्म हासिल करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो इससे खुदा को खुश नहीं कर सकता। खुदा की नजर में ये एक मकरूह चीज है। آپ کبھی بھی اس دنیاوی علم اور جذبے کے ساتھ خدا کو خوش نہیں کر سکتے، کیونکہ کلام فرماتا ہے یہ خدا سے دشمنی ہے، وہ یہ برداشت نہیں کر سکتا، اور ہر کوئی پورا علم حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے، وہ جانتے ہیں کہ ان کو کون سی باتیں کہنی ہیں، اور اس طرح ان کا پیغام ایک سیاسی بن جاتا ہے بجائے روح القدس کی قدرت سے ظاہر کیا گیا پیغام ہو جو انسان کے دل میں اتر کر گناہ کو ظاہر کر دے۔ یہ لوگ سیاسی بات چیت کے لیے تیار کیے جاتے ہیں اور ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہے۔ پالوس کہتا ہے کلام ہمارے پاس نہ صرف یا انجیل صرف لفظوں میں نہیں آئی بلکہ روح القدس کے ظہور اور قدرت کے ساتھ آئی ہے۔ اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ انجیل روح القدس کی قدرت کو ظاہر کرنے کے لیے دی گئی ہے، لیکن یہ سارے آدمی سیمینری میں جاتے اور اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے میں لگے رہتے ہیں۔ وہاں انہیں سکھایا جاتا ہے کہ کیسے لوگوں کے سامنے کھڑا ہونا ہے، کیسے انہوں نے اپنے آپ کو پیش کرنا ہے، انہیں کس طرح کا لباس پہننا ہے اور انہیں کس طرح کی اداکاری کرنی ہے، انہیں کبھی بھی غلط گرامر استعمال نہیں کرنی ہے۔ اب یہ سب باتیں ایک سیاسی تقریر کرنے کے لیے تو ٹھیک ہے، لیکن ہمیں آدمی کے دل کو خوش کرنے والی باتیں نہیں سننی ہیں۔ پالوس کہتا ہے جو انجیل میں تمہیں سناتا ہوں وہ مجھے ایسے نہیں ملی بلکہ روح القدس کی قدرت کے ظاہر کرنے اور نئے طور سے ملی ہے۔ یہ پہلے سے تیار کردہ تقریر نہیں ہے تاکہ تمہارا فہم اور تمہارا بھروسہ کسی انسانی عقل پر نہ ہو، لیکن یہ مسیح کے جی اٹھنے کی قدرت کے ظہور کے ساتھ آئی ہے۔ یہی انجیل ہے، مسیح کو اس کے جی اٹھنے کی قدرت سے جاننا۔ ہر ایک تنظیمی آدمی یہی سوچنے کی کوشش کرتا ہے کہ وہ دوسرے سے زیادہ عقل مند ہے۔ میتھوڈسٹ کہتے ہیں ہمارے پاس زیادہ ذہین لوگ ہیں، بیپٹسٹ اور چرچ آف کرائسٹ اور اسی طرح وہ سب کہتے ہیں ہم بہت ذہین ہیں۔ ہم بلکہ ہمارے لوگ، ہم معمولی آدمی کو انجیل کی منادی کرنے کے لیے باہر نہیں بھیجتے کیونکہ وہ ان کے چنے ہوئے ہوتے ہیں۔ اے خدا رحم کر، ان کے چنے ہوئے ہیں، وہ ان کی دستاویزی اور خاص تعلیم کو مانتے ہیں، تب وہ انہیں کلیسیا میں رکھتے ہیں۔ خدا اسے کسی بھی طرح چھو نہیں سکتا۔ میں چاہتا ہوں کوئی ایسا شخص مجھے کلام سنائے جسے روح القدس نے چنا ہو، کسی آدمی یا تنظیم نے نہیں بلکہ خدا نے کھڑا کیا ہو۔ سارا علم، وہ کہتے ہیں ہم اس کے بارے میں سب کچھ جانتے ہیں، لیکن ان میں سے بہت سارے روح القدس کا پہلا حرف تک نہیں جانتے، وہ اس کا انکار کرتے ہیں۔ اس سے مجھے ایک چھوٹی سی کتاب کی یاد آئی ہے جو کہ 10 سال پہلے میں کیلیفورنیا میں پڑھ رہا تھا۔ میں نے اسے پرانی کتابوں کی دکان سے خریدا تھا، میں بھول گیا ہوں کہ اس کا مصنف کون تھا، یہ ایک چھوٹی سی کتاب 10 سینٹ کی تھی، لیکن اس میں چلاکی اور مذاق کی باتوں کے علاوہ اچھی باتیں بھی موجود تھی، لیکن اس میں مجھے کچھ ایسی باتیں ملی جیسے کہ خدا مجھ سے بات کر رہا ہو۔ اس میں ایک چھوٹی سی کہانی تھی کہ ایک صبح ایک مرغی خانے میں ایک چھوٹا چوزا تھا۔ اس نے سوچا کہ دنیا میں جتنا بھی علم ہے وہ اسے جانتا ہے، پس وہ اڑ کر ایک باکس پر بیٹھ گیا اور اپنی چونچ اس باکس پر 4 یا 5 بار ماری اور اپنے سر کو پیچھے کو جھٹکا اور ایسی بانگ دی جیسی آپ نے کبھی بھی کسی مرغے کی بانگ نہ سنی ہو۔ اور اس طرح اپنے دوسرے چوزوں کا دھیان اپنی طرف کر لیا اور اس نے کہا، اس مرغی خانے کے خواتینوں حضرات، میں آج صبح آپ سب کو کوئی عظیم تعلیمی پروگرام کے بارے میں بتانا چاہتا ہوں جو ہم نے تیار کیا ہے۔ کہا، میں نے اپنے مطالعے کے دوران بہت علم حاصل کیا ہے۔ یہ کہتے ہوئے اس نے اپنی چونچ پر درے چشمے کو ذرا ہلایا اور اس نے کہا، میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں، ہم چوزے زیادہ علم حاصل کر کے اپنے آپ کو سدھار سکتے ہیں۔ اس لیے میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ ہم کہاں کھودیں और इस डड़बे में हम एक खास सुराख पर काम करें तो हम ऐसे विटामिन ले सकेंगे, फिर हमारे पर और खूबसूरत हो जाएंगे और हम ऊंची आवाज में बांग दे सकेंगे। और हो, मैं आपको ये भी बता सकता हूँ कि हम कौन कौन से तरीकों से अपने आप को बेहतर बना सकते हैं। और छोटे चूजों ने अपनी लाल कलगियों को खड़ा किया, उन्होंने शोर मचाया और कहा, क्या ये बहुत प्यारा चूजा नहीं है? और उन्होंने हकीकत में उसे सराहा। ओ, ये वाकई एक जहीन मुर्गा है। इससे मुझे यहाँ के सेमिनरी के मुनादों की याद आ रही है। ये कैसा जहीन आदमी है। अब हमें दूसरे चूजों के साथ चलने की जरूरत नहीं है, हम सबको इसके साथ मिलना चाहिए। ठीक इससे पहले कि इस छोटे चूजे की तकरीर खत्म होती, एक दूसरा छोटा चूजा जिसके पर इतने चमकदार नहीं थे, वो डड़बे में से दूसरे चूजों के दरमियान से दौड़ता हुआ आया और कहा, लड़को एक मिनट रुको, मैंने अभी अभी रेडियो पर ताज़ा खबर सुनी है, चूजों का मूल एक पौंड वजन पर 4 सेंट बढ़ गया है और हम सब कल जबा होने जा रहे हैं। आपका इल्म आपकी क्या भलाई करेगा? भाइयों, वो सारा इल्म जो हम हासिल करते हैं उससे हमारा क्या भला हो सकता है? हम 6 फीट की खाक ही तो हैं। हम सब एक एक इंच और एक एक मिनट मर रहे हैं। हमारे इल्म का मतलब कुछ भी नहीं, लेकिन हम तो खुदा को जानना चाहते हैं, लेकिन वो इल्म चाहते हैं। जैसे कुछ अरसा पहले मैं एक छोटी कनेरी चिड़िया के बारे में बात कर रहा था और वो सोचती थी कि उसके पास वो सारा इल्म है जिसकी उसे जरूरत है, और उसने सोचा कि वो इंसानों के बारे में इतना इल्म रखती है कि उसे बाकी कनेरी चिड़ियों को बताना चाहिए। बस वो अपने पिंजरे से बाहर आई और उसने इंसानों के बारे में बताना शुरू किया ताकि पता चले कि वो इंसानों के बारे में क्या कुछ जानती है। और इसके बाद अचानक एक प्रोफेसर आजमाइश के लिए चलता हुआ आया और बहुत ही मुश्किल अल्फाज में उसने बोलना शुरू किया, और उस छोटी चिड़िया ने अपनी पलकें झपकाई और अपनी गर्दन झटकी। अब उसकी आंखें उस प्रोफेसर को देख रही थी, उसके कान उसको सुन रहे थे, लेकिन वो बिलाशुबा समझ नहीं रही थी कि वो किसके बारे में बात कर रहा है। क्यों? इसलिए कि उसके पास कनेरी जेहन था, उसके पास सिर्फ एक परिंदे का जेहन था, यही कुछ उसके पास था। उसके पास इंसानी जेहन नहीं था, इसलिए वो इंसानों की तरह नहीं सोच सकती थी। और इसी तरह एक इंसान खुदा की तरह सोच नहीं सकता। आप एक इंसान हैं और सारा दुनियावी इल्म एक कनेरी चिड़िया के जेहन से बढ़कर नहीं है। सब कुछ जो आप करते हैं उसी से आपको जर पहुंचता है, इसलिए आप में मसीह का जेहन होना जरूरी है। यही सबब है कि लोग जाते हैं और तंजीमों में शामिल हो जाते हैं और नए सिरे से पैदा होने की बजाय हाथ मिलाते हैं। वो नई पैदाइश को छोड़ देना चाहते हैं, वो नए सिरे से पैदा होना नहीं चाहते। और वो जानते हैं कि ये बाइबल में है जो हम सिखाते हैं, बस वो इसके मुतबादल कुछ चाहते हैं। और इसी तरह वो पेंटिकॉस्टल लोग भी बुरे हैं जो इसके मुतबादल कुछ करने की कोशिश करते हैं। वो इसमें कांट छांट करते हैं ताकि ये छोटा हो जाए। हम हाथ मिलाकर कलीसिया में शामिल हो जाएंगे और छिड़काव का बपतिस्मा या कुछ और भी चलेगा। वो नई पैदाइश से डरते हैं। कभी कभी मैं सोचता हूँ कि ब्रैनम टैबरनेकल भी नई पैदाइश से डरने लगा है। अब हम सब पैदाइश के बारे में जानते हैं, मुझे परवाह नहीं ये कहाँ होती है या कहीं पर भी हो, किसी भी जगह हो, ये गंदगी के साथ है। चाहे एक बच्चा पत्तियों या सख्त जमीन पर या अस्पताल के सजे हुए गुलाबी कमरे में पैदा हो, किसी भी तरह ये गंदगी से भरी है। चाहे ये बछड़ा हो या किसी की भी पैदाइश हो, ये गंदगी से भरी है। और नई पैदाइश भी इससे कम नहीं है, मगर लोग बहुत ज्यादा अदब वाले बन गए हैं। कहते हैं, हम वहाँ जाएंगे जहाँ लोग सिर्फ हाथ मिलाते हैं, हम वहाँ जाएंगे जहाँ वो चीखते चलाते नहीं हैं और मजबा पर रोते और टकरे नहीं मारते। अब बहुत ज्यादा इंसानियत अपनाए हुए हैं। हमें कितना मरने और नई पैदाइश हासिल करने की जरूरत है ताकि जिंदगी वजूद में आ सके। आप एक पुराने आलू के बीज को लें, एक बीज वाले आलू को लें, आप एक आलू ले और उसको जमीन में दबा दे, जब तक वो पुराना आलू गल सड़ नहीं जाता आपको नए आलू नहीं मिलेंगे। एक दाना जब तक गल सड़ नहीं जाता नई जिंदगी नहीं आती। और इस तरह जब तक एक मर्द और एक औरत का अपना इल्म और खुद गर्जी गल सड़ नहीं जाते, वो नई पैदाइश नहीं पा सकते। मौत, मजबा पर मरना और चीख उठना, और जहाँ पसीने से आपके कॉलर की कलफ अलग हो रही हो और सब कुछ गंदा हो रहा हो, तब खुदा के रूल कुछ से आप नई पैदाइश हासिल कर सकते हैं। मुझे परवाह नहीं आप चीख रहे हैं या गैर जुबाने बोल रहे हैं, ऊपर नीचे उछल कूद रहे हैं या एक चूजे की तरह सर हिला रहे हैं, क्योंकि आप एक नई पैदाइश हासिल कर रहे हैं। लेकिन हमने तो इसके मुतबादल कोई और तरीका अपना लिया है। यकीनन हम तो कोई आला तरीका चाहते हैं। किसी दिन जुमे को मैं और मेरी बीवी बाजार जा रहे थे। मेरा मतलब इस बार को बार बार कहना नहीं है, लेकिन जब हम सड़क से गुजर रहे थे तो मुझे अपना सर इधर उधर घुमाना पड़ा क्योंकि वहाँ नंगी औरतें थी। मैंने खुदा से वादा किया था जब मैं अंधा हो गया था, अगर वो मेरी आंखें ठीक कर देगा तो मैं इनसे अच्छी चीजें देखूंगा। और मैंने अपनी कार में एक छोटी सी सलीब लटका रखी है। जब इस तरह की गंदी चीजें मेरे सामने आती हैं, तो मैं उस स्लीप पर देखता हूँ और जैसे ही स्लीप पर देखता हूँ तो कहता हूँ, ए खुदा मेरी तू ही पनाह है। मैंने उन औरतों को देखा। मेडा ने कहा, आज हमने एक भी ऐसी औरत नहीं देखी जिसने स्कर्ट पहना हो। और उसने कहा, बिल जरा उस औरत को देखो जो अपने पूरे बदन पर कपड़ों की बजाय छोटी सी पट्टी लटकाए हुए है। उसने कहा, आपका मतलब है कि ये औरत नहीं जानती कि ऐसा करना गलत है? कहा, अगर ये नहीं समझती कि ये गलत है तो फिर इसका जहन काम नहीं करता। मैंने कहा, प्यारी एक मिनट रुको, ये एक अमरीकी खातून है, ये वैसा ही कर रही है जैसे अमरीकी खवातीन करती हैं। मैंने कहा, प्यारी ज्यादा अरसा नहीं हुआ जब मैं फिनलैंड में था और वहाँ मैंने डॉक्टर मैनिनन से एक सवाल पूछा जो मेरे साथ बैठा हुआ था, और हम वहाँ हेल्थ बात के लिए जा रहे थे जिसे वो सोना कहते हैं, और वो आपको वहाँ ले जाते हैं और वहाँ चट्टान पर गर्म पानी आप पर अंडेलते हैं जिससे आप पसीने पसीने हो जाते हैं, फिर वो आपसे ठंडे पानी में छलांग लगवाते हैं और फिर वापस ले आते हैं। इसके बाद वो आपको एक कमरे में ले जाते हैं और वहाँ नर्सें या नंगी औरतें होती हैं जो उन आदमियों के बदन को रगड़ रगड़ कर साफ करती हैं और फिर तालाब में भेज देती हैं। मैं अंदर नहीं जाऊँगा। और मैंने कहा, डॉक्टर मैनिनन ये सब गलत है। उसने कहा, रेवरेंड ब्रैनम ठीक है ये सब गलत है, तो फिर अमरीकी डॉक्टरों के बारे में क्या ख्याल है जब वो एक औरत को लेते हैं और मेज पर नंगा लटाते हैं और उसके तौलीदी अज़ा का मुआयना करते हैं? और अस्पताल में आपकी नर्सों की क्या हालत है? मैंने कहा, भाई मैनिनन माफी चाहता हूँ, आप दुरुस्त कह रहे हैं। ये क्या है? ये रस्म और रवाज है। जब मैं पेरिस में था तो मैंने बड़ी मुश्किल से इसका यकीन किया कि वहाँ मर्दों और औरतों के लिए एक ही बैतुल खला था। मैं इस बात को भी समझ नहीं पाया था कि सड़क के किनारे मर्दों और औरतों के लिए एक ही आरामगाह थी। मैं यकीन नहीं कर पाया था जब एक औरत अपने बॉयफ्रेंड के साथ समुंदर पर तैराकी के लिए जाती थी। उनके लिए वहाँ कपड़े बदलने के लिए कोई कमरा नहीं था। वो वहाँ अपने सारे कपड़े उतार कर यहाँ तक कि अपना आखिरी कपड़ा भी उतार देते थे और फिर एक छोटी सी पट्टी बांध कर अपनी पुश्त घुमा कर तैराकी करते थे। अजीब है लेकिन ऐसा ही था। लोग उन पर क्यों ध्यान नहीं देते थे? क्योंकि ये फ्रांस की रीत थी। अफ्रीका में मर्द और औरतें, जवान और बूढ़े, बगैर कपड़ों के मैदानों में घूम रहे होते हैं। वो जानते तक नहीं कि आरामगाह ये चीजें क्या होती हैं। कभी किसी से पर्दा तक नहीं करते क्योंकि वो इसमें इम्तियाज करना नहीं जानते। वो फर्क नहीं जानते क्योंकि ये कौमों के रस्म और रवाज हैं। मगर मैंने कहा, प्यारी हम मुख्तलिफ हैं, हम किसी दूसरे देश के हैं, हम यहाँ के नहीं हैं, हम परदेसी हैं, इसलिए तो हमें ये सब कुछ बहुत गलत दिखाई देता है। क्योंकि बाइबल कहती है जो ऐसा सोचते और इकरार करते हैं वो इस चीज का दावा करते हैं और जाहिर करते हैं कि हम यहाँ परदेसी और मुसाफिर हैं, वो आने वाले देश के मुतलाशी हैं। इटली, फ्रांस, अफ्रीका या किसी भी कौम में अगर एक मर्द या एक औरत रूल कुछ के जरिए नई पदेश हासिल कर चुके हैं तो फिर वो ऐसे काम नहीं करेंगे, वो वैसे कपड़े नहीं पहनेंगे, वो उन जैसे अमल नहीं करेंगे, क्योंकि वो किसी दूसरे देश के हैं, जिसका बनाने वाला और हुक्मरानी करने वाला खुदा है। हम फरदोस के बाशिंदे हैं। आपके अंदर जो रूह है वो आपकी जिंदगी को तहरीक देती है। अगर आप अमरीकी हैं तो आप वही करेंगे जैसे अमरीकी लोग करते हैं। अगर आप फ्रांसीसी हैं तो आप वही करेंगे जो फ्रांसीसी करते हैं और दूसरों पर नुक्ताचीनी करेंगे। लेकिन अगर आप खुदा के हैं तो फिर आप वही करेंगे जो आसमान पर होता है, क्योंकि आपकी रूह ऊपर से आई है और आपको कंट्रोल करती है। इस छोटी सी बात पर आप गौर कर सकते हैं और कलाम में से देख सकते हैं। जिन लोगों ने उस नए शहर को हासिल करना चाहा, उनका अमल फर्क था। उन्होंने इकरार किया कि वो परदेसी और मुसाफिर हैं। मगर काइन में से मगरूर और बरगश्ता लोग आए, मगर मसीही परदेसी और मुसाफिर ही रहे। एक बगोड़े का कोई घर नहीं होता और एक बरगश्ता शख्स बड़ा खतरनाक होता है, लेकिन एक परदेसी हकीकी नजर आता है और एक हकीकी देश और कौम से ताल्लुक रखता है और अपने घर वापस जाने की कोशिश करता रहता है। वो अपने रहन सहन से यही बताता है कि वो किसी दूसरे देश का बाशिंदा है, इसका यही सबब है। लेकिन फिर भी जो लोग ऐसा करते और ऐसी चीजें पहनते हैं, मैं आपको बताता हूँ, साउथ अफ्रीका में जब मैंने 30,000 जंगली लोगों को देखा जो पदेशी नंगे थे, जिनमें 16, 18 और 20 साल के लड़के और लड़कियां थीं, जो बगैर लबास वहां खड़े थे और उनके चेहरों पर मिट्टी और रंग और रोगन लगा हुआ था, उनके नाक में हड्डियां और कानों में लकड़ियों के टुकड़े झूल रहे थे और उनके बालों में इंसानों की और दूसरी हड्डियां फंसाई गई थी और जानवरों के दांत उनके बदन पर लटक रहे थे और वो इस तरह नंगे थे जिस तरह वो अपनी पदेश के वक्त दुनिया में आए थे, मगर इस नंगेपन से अनजान थे। मगर जब उन्होंने मसीह को कबूल किया तो मुंह के बल गिर गए और रूल कुछ को हासिल किया। तब उन्होंने खड़े होकर अपने हाथों से अपने बदन को डांप लिया और शर्मिंदगी महसूस की और उन्होंने वहां जाकर कपड़े तलाश किए और पहन लिए। क्यों? इसलिए कि वो इस दुनिया के लिए परदेसी और मुसाफिर बन गए थे। हालेलुया। वो खुदा से दूर थे। जी जनाब। ओ जी हाँ, ये लोग अपने आप को मसीह कहते हैं, ये कलीसियाओं से ताल्लुक रखते हैं, ये जाते और कहते हैं हम मेथोडिस्ट हैं, हम बैप्टिस्ट हैं, हम पेंटिकोस्टल हैं, हम सेवंथ डे एडवेंटिस्ट हैं, हम ये वो और दूसरे हैं। इसका उससे कोई भी ताल्लुक नहीं है। आपकी रूह जो जिंदगी आपके अंदर है वही आपको माइल करती है और बताती है कि आप क्या हैं। यीशु ने कहा तुम उनके फलों से उन्हें पहचान लोगे। आज कलीसिया इसराइल की मानित बन गई है। खुदा उनका बादशाह था, मगर जब उन्होंने देखा कि गैर अक्वाम के बादशाह हैं, तो उन्होंने भी गैर अक्वाम के कामों की नकल करनी शुरू कर दी और अपने लिए एक बादशाह बना लिया। और जैसे ही उन्होंने ऐसा किया वो मुसीबत में पड़ गए। आहिस्ता आहिस्ता ये मुसीबत शुरू होती गई। आहिस्ता आहिस्ता दुनियादारी उनमें समाना शुरू हो गई। आखिरकार ये अखियब तक आ गई। एक एक करके आने वाले बादशाह दुनियादारी में पड़ते गए और आखिरकार जिंदगी उनमें से खत्म हो गई, क्योंकि वो दुनियादारी में इतने जा चुके थे। जब असल बादशाह दुनिया में आया तो उन्होंने उसे न पहचाना। बिल्कुल यही कुछ कलीसिया ने भी किया है। इसे इख्तियार कर लिया है, ये आप हैं। इसने तालीम और सियासत को अपना लिया है। इसने तंजीमों, बड़े बड़े चर्चिज, समाजी और शेखी बाज मुनादों को अपना लिया है। और जब असल बादशाह उनके पास आता है तो ये उसे पहचान नहीं पाते और ये रूह कुछ को मसलूब कर रहे हैं जो कि इनका बादशाह है। ये उसको नहीं जानते बल्कि उस पर हंसते हैं और उसका मजाक उड़ाते हैं, जैसा यहूदियों ने अपने मसीहा के साथ किया, वैसा ही कलीसिया अपने मसीहा के साथ कर रही है। वो ये नहीं जानते हैं, उनके पास रूहानी बसारत नहीं है, क्योंकि उनकी आंखें बड़ी बड़ी डिग्रियां और बड़ी बड़ी इमारतें देखती हैं, और वो दुनिया की चीजों के साथ मुवाजना करते हैं। हम कभी भी दुनिया की चीजों के साथ नेकी का मुवाजना नहीं कर सकते। हम तो अपने आप को हलीम बनाने के लिए नेकी करते हैं, और खुदा में एक भी अक्सरियत होता है। और आज जो मनात शिफाया इबादत करवाते हैं मैदान से बाहर हैं, क्योंकि ये हरीफ हैं और मुकाबला करने वाले हैं। एक कहता है ठीक है, ये खुदा की बरकत है, मेरे पास 1000 लोग हैं, मेरी इबादत तो आपकी इबादत से बहुत बड़ी थी। इससे क्या फर्क पड़ता है, हमारे पास एक हो या लाखों हो, इससे क्या फर्क पड़ता है? क्या हम खुदा के साथ सच्चे हैं? क्या हम उसके कलाम के साथ सच्चे हैं? क्या हम रूल कुछ की परख में खड़े हैं? क्या ये सच है? ये बातें खास हैं। मगर हम बाइबल पर समझौते कर लेते हैं। हमारे बहुत सारे पेंटिकोस्टल लोग बाइबल की बुनियादी बातों पर समझौते कर लेते हैं। मैं किसी के जज्बात को ठेस पहुंचाना नहीं चाहता। मैं अपनी कलीसिया में हूं और मैं महसूस करता हूं कि यही अपनी कलीसिया में करूं, क्योंकि मैं अंजील सुना रहा हूं। लेकिन यहां लाखों पेंटिकोस्टल मुनाद जानते हैं कि बाइबल में बाप बेटे और रूल कुछ के नाम में कोई बपतिस्मा नहीं दिया गया। मैं आर्थ बिशप या किसी को भी चैलेंज करता हूं कि वो मुझे दिखाए कि कहां किसी को बाप बेटे और रूल कुछ के नाम में बपतिस्मा दिया गया है। मगर ये इसलिए समझौते करते हैं क्योंकि उनकी तंजीमें ये कहती हैं। नए ऐदनामे में और इसके बाद 300 सालों तक तारीख गवाह है कि किसी भी शख्स को यीशु मसीह के नाम के अलावा बपतिस्मा नहीं दिया गया। फिर ये सब क्या है? ये तंजीम है जिसने समझौता करने के लिए ये किया है। और आज उन्होंने सड़कों पर मुनादी करने वालों को हटा दिया है और दफ जैसे साज को चर्च से बाहर कर दिया है। उन्होंने सारे जलाल को चर्च से बाहर निकाल दिया है और सेमिनरी की मुनादी को या पुराने मुर्गे की बांग देने वाली मुनादी को हासिल कर लिया है। माशरे में से चमक दमक वाले जिनकी औरतें निकले पहनती और ऐसे कपड़े पहनती हैं जिनमें से बदन नजर आए ले लिया है, और मद सिगरेट पीते, जुआ खेलते और गंदे लतीफे सुनाते हैं। ये खुदा की नजर में शर्म की बात है। मैं जानता हूँ ये बातें चुभने वाली हैं, मगर वक्त आ गया है कोई तो कुछ कहे। लोग समझौते कर रहे हैं ताकि दुनिया जैसे काम करें। मैं परवाह नहीं करता चाहे खुदा के अलावा मेरे साथ कोई भी ना रहे, लेकिन मैं तो सिर्फ खुदा के कलाम की सच्चाई की मुनादी करूंगा और इसी के साथ खड़ा रहूंगा, चाहे मुझे मरना भी पड़े, मैं फिर भी सच्चाई के साथ खड़ा रहूंगा। यकीनन हम सच्चाई चाहते हैं। मैं कलीसिया के मियार पर नहीं चलना चाहूंगा, बल्कि खुदा के कलाम के मियार पर चलना चाहूंगा। लेकिन दलाइला, आपने गौर किया, वो जानती थी कि समसून एक ताकतवर शख्स है, मगर वो नहीं जानती थी कि उसकी ताकत का राज क्या है। वो नहीं जानती थी कि वो ताकत कहाँ है, मगर समसून के पास कोई ऐसी बड़ी ताकत थी जिसका वो मालिक था, और वो उसके बारे में जानना चाहती थी। और दलाइला अपनी खूबसूरती से समसून को अपनी मोहब्बत में फंसाती रही। ओ, वो बेहया लिबास पहनती थी और आजकल की कमसिन लड़कियों की तरह तमस्कर अमेज हंसी के साथ उसके आगे पीछे चलती थी और वगैरह वगैरह। और जब आप किसी दूसरे की तरह काम करते हैं तो ये ऐसा ही है जैसे दलाइला समसून को शादी के जाल में फंसा रही है। बिल्कुल यही कुछ दुनिया ने कलीसिया के साथ किया। अब तेरी बड़ी ताकत कहाँ है? ठीक है, अगर हम मुनज्जम हो जाएंगे तो ताकत कम हो जाएगी। यही कुछ कैथोलिक कलीसिया ने किया। लेकिन जब ये कहा गया, देख फलस्ती तुझ पर चढ़ाए समसून, और लूथर बाहर निकल आया, लेकिन फिर वो दोबारा मुनज्जम हो गए। अगर तुम मुझे दूसरी रस्सियों से बांधोगे तो मेरा जोर जाता रहेगा। बस उन्होंने ऐसा किया, समसून फलस्ती तुझ पर चढ़ाए, और फिर क्या हुआ? वैसली उबर कर बाहर आ गया और उन रस्सियों को तोड़ डाला। तूने अब तक मुझे धोखा ही दिया समसून, क्या तू नहीं जानता मैं तुझसे प्यार करती हूँ? ये दुरुस्त है, अब तू अपने दिल का भेद मुझे बता दे। ठीक है, तू मुझे अब दूसरी रस्सियों से बांधो। ठीक है, अब हम ऐसा करेंगे। ये क्या है? यही तो तंजीमी रस्सियाँ हैं। तू मुझे आजाद कर दो ताकि मेरी कोई तंजीम ना हो, फिर मैं तुम्हें बताऊंगा और तुम मुझे बांध सकोगे। तब इस तरह से पेंटिकोस्टल निकल कर आए। तेरी ताकत कहाँ है? फलस्ती तुझ पर चढ़ाए, और उसने फिर दोबारा रस्सियों को तोड़ डाला। लेकिन अब क्या हुआ है? उसने पेंटिकोस्टलों को भी पकड़ लिया है। उनके पास्टर बड़े आदमी और इल्मे इलाहियात के माहिर बनाए जाते हैं। उनके पास भी उतने बड़े ही स्कूल और मजहबी रसूम हैं जितनी के मेथोडिस्ट या बैप्टिस्ट या बाकी सबके पास मौजूद हैं। आप उनके चर्चेज में जाएं तो आप एक भी आमीन नहीं सुन पाएंगे। वो ऐसे ठंडे बैठे होते हैं जैसे स्मिकोस के झुंड ठीक कुतुब शमाली से दूर, ठंडे और लातल्लुक। और अब शमसून, फिर फलस्ती तुझ पर चढ़ाए, अमरीका फलस्ती तुझ पर चढ़ाए। वो एक रूह की यगानगी कहाँ है? पेंटिकोस की यगानगत कहाँ है? आज असेंबलीज ऑफ गॉड और यूनाइटेड और चर्च ऑफ गॉड और ये और वो और मुख्तलिफ हर एक अलग इज्म के साथ है, ये इसके साथ है और वो उसके साथ है। हम इतने बढ़ चुके हैं कि अगर आप एक शहर में बेदारी की इबादत के लिए जाएं, अगर एक कलीसिया ने इसका इनेकाद किया है तो बाकी कलीसियाएं इसमें शमूलियत नहीं करेंगी। अमरीका धैर्य तुझ पर चढ़ाए, हमारी ताकत कहाँ है, हमारी अजमत कहाँ है? ये क्या है? ये इसलिए है हमने खुदा की कुव्वत की बजाय इंसान की अकल की पैरवी की है। उन्होंने हमारे मुनादों को लेकर सख्त मजाज और रूखे बना दिया है और हमें मुनज्जम कर दिया है, जिसकी वजह से हम रूखे और अकड़ी हुई गर्दन वाले शख्स बन गए हैं। बस आप लोग, क्या चर्च में आप लोग मजीद नारा सुन सकते हैं? आप कभी किसी को रोते हुए नहीं देखते। रोने वालों की कुर्सियां तहखानों में डाल दी गई हैं। अब मजीद चर्च में जलाल नहीं रह गया। अब तो हम सिर्फ इतना करते हैं कि पीछे खामोशी से बैठे रहें, जितनी देर बैठ सकते हैं। हम आजाद नहीं हैं, हम बंधे हुए हैं। शैतान ने आज जिंदा खुदा की कलीसिया को जदीद दौर की बदरूहों से बांध रखा है, ये सच है। अब कलीसिया में कोई ताकत नहीं है, वहाँ कोई आजादी नहीं है। लोग रूखे और सख्त मजाज हैं। क्यों खुदा पेंटिकोस्टल लोगों के दरमियान आकर ये दिखा रहा है कि वही खुदा है और अपने जी उठने के निशानों के साथ जाहिर हो रहा है, इससे भी उन्हें जुम्बश नहीं होती? जलाल हो, क्यों? बल्कि उनके लिए शर्म है। मैं सारे मुल्क में घूमता हूँ, खुदा अपना काम करता है और निशान दिखाता है और लोग बैठे रहते हैं और कहते हैं ठीक है, मेरा ख्याल है ये ठीक है। हो, मैं ये जानता हूँ ऐसा हो सकता है। उन्हें इससे जुम्बश नहीं होती, क्यों? इसलिए कि दुनियावी दलैला ने उन्हें बांध रखा है, वो जंजीरों से जकड़े हुए हैं। अब वो उन्हें एक इत्तेहाद में बांधने जा रहे हैं। शमसून, फलस्ती तुझ पर चढ़ाए, अब तू क्या करने जा रहा है? हो, हमारे पास बड़ी बड़ी तंजीमें हैं, यकीनन हमारी कलीसिया इतनी बढ़ गई है जितनी के पहले कभी नहीं थी। लेकिन रूह कहाँ है? रूल कुछ कहाँ है? शैतान ने यही सब कुछ किया है, कलीसिया को शादी की दावत दे दी है, कलीसिया के आगे शादी की दावत रखी है। मेरे पास आ जाओ, अगर तुम मेरी मानोगे तो मैं तुम्हें यहाँ बड़े बड़े चर्च अता करूँगा। अगर तुम उस कपटी मनाद को भगा दो और कोई ऐसा आदमी चुन लो जो इल्मे इलाहियात को जानता हो, तो हम एक आला और खूबसूरत चर्च बनाएंगे और दूसरों की तरह बन जाएंगे। आपको शर्म आनी चाहिए। इसकी बजाय तुम्हारे पास ऐसा आदमी होना चाहिए जो फलियों में से कॉफी बनाना ना जानता हो, लेकिन रूल कुछ से भरा हुआ हो, खुदा की कुदरत से भरा हुआ हो, जो समझौते ना करता हो। लेकिन हो, ये बहुत ठंडे पड़ चुके हैं। लेकिन जब कोई गरीब मुकद्दस इबादत में जाकर गैर जुबानें बोलना शुरू करता है या नारे लगाने या कुछ और करने लगता है, तो बाकी सब लोग बड़ी बतकों की तरह उसे देखने लग जाते हैं। ये क्या था? ठीक, हैरान कुन है, क्यों? इसलिए ये जरूर ही कोई दीवाना है जो कहीं से चला आ रहा है। आप जानते हैं, ये बात सच है। कोई गरीब मुकद्दस उठता है और खुशी से अपने हाथ उठाता है और पुकार उठता है, खुदावंद की तारीफ हो। कोई तो जुनूनी होगा जो अंजील की मुनादी पर आमीन कहेगा और बाकी सब लोग मुड़कर उसे देखने लग जाते हैं और कहते हैं ये पेंटिकोस्टल है। क्या मसला है? आप बैप्टिस्ट और मेथोडिस्ट के नमूने पर चल रहे हैं और कैथलिक की पैरवी कर रहे हैं और कैथलिक दोजक की पैरवी कर रही है और ये सब मिलकर दोजक की जानिब जा रहे हैं, ये दुरुस्त है। दलैला ने आज बड़े बड़े चर्चेस, अच्छे तालीम याफ्ता और आला दर्जे के खादमों के जरिए शादी की पेशकश की है। ठीक है, आप जानते हैं फला फला आदमी करोड़पति है, अगर हम उसे अपने चर्च में ले आए तो अच्छा होगा। हो मेरे खुदाया, अगर वो नए सिरे से पैदा नहीं हुआ तो वो इस काबिल नहीं है उसे यहाँ ना लाया जाए। मुझे इस बात की परवाह नहीं कि उसके पास लाखों डॉलर हैं या 40 कैटिलैक्स कारें हैं। या चाहे उसके पास कुछ भी हो, मगर उसे नई पैदाइश हासिल करनी होगी। उसे नई पैदाइश पाकर रूह कुछ के वसीला नई मखलूक बनना होगा और नई पैदाइश में से आना होगा। जैसा कि मुझे माफ करना, एक चिल्लाते और पुकारते और रोते हुए जिस तरह दूसरे सब करते हुए आते हैं, और इसको अपनी जिंदगी से साबित करना होगा कि ये उसने पाया है। आमीन। यही तो है जिसकी आपको जरूरत है।
समसोन,
फलस्ती तुझ पर चढ़ाए, दैरिये तुझ पर चढ़ाए, दुनिया तुझ पर चढ़ाई, शैतान तुझ पर चढ़ाया। ये लोग मुझे मुड़कर देखते हैं कि खुदा का रूह मौजज़ात दिखा रहा है और उसके जी उठने की बातों को जाहिर कर रहा है जिसका यीशु ने वादा किया था, लेकिन वो कहते हैं, आपको पता है, मेरा ख्याल है भाई ब्रैनम जेन को टेलीपैथी से पढ़ लेते हैं, मेरा पास्टर कहता है ये शैतान की तरफ से है। तुम नादार, रयाकार, दगाबाज, हक के मुनकर, सब पॉलिश किए हुए बेड़ों के रूप में बेड़िए हो। यीशु ने कहा था, अगर तुम मुझे जानते तो मेरे इस दिन को भी जानते। लेकिन तुम तो सौल जैसा जुल हो जो दूसरी दुनिया की तरह बनने की कोशिश में रहता है, मगर हमें तो खुदा के लोगों की तलाश है, ऐसे आदमियों का ग्रोह जो कलाम पर समझौता ना करता हो, जो सच्चाई की मुनादी करे और रूल कुछ के बपतिस्मे के साथ खड़ा हो। मगर इस दुनिया ने क्या किया है? इसने आपकी सारी कुव्वत को काट डाला है। आप पेंतिकोस्ट नजीर पैदा हुए थे, मगर दुनिया ने आपकी हकीकी कुव्वत को काट डाला है। अब आप दूसरे लोगों की तरह पुरतकल्लुफ बन गए हैं। अब हम क्या करने जा रहे हैं? क्या होने जा रहा है? इस मतन के इख्तिताम पर मैं एक शानदार बात सोच रहा हूँ। जब समसून बंधा हुआ है तो हम में बेदारी कैसे आ सकती है? जरा हमारे वफादार भाई बिली ग्राम की बातें सुने जो कहते हैं, हमारे दिनों में बेदारी आई। ओरल रॉबर्ट्स की पुकार सुने, हमारे दिनों में बेदारी आई। बाकी सबको सुने, हमारे दिनों में बेदारी आई। जब हम बंधे हुए हैं तो बेदारी कैसे आ सकती है? हमने रूल कुछ को अपनी तंजीमों और अपनी रवायत में जकड़ डाला है, तो हमें रूल कुछ से बड़ी बेदारी कैसे मिल सकती है? आमीन। मैं जानता हूँ ये बातें गर्म और जुलसाने वाली हैं, मगर ये सच्चाई है। आपको रूल कुछ वाली बेदारी कैसे मिल सकती है जबकि आप ठंडे और बंदरों में बंधे हुए हैं? बाइबल कहती है वो दीनदारी की वजह तो रखेंगे, वो दीनदारी की वजह तो रखेंगे, मगर उसकी कुव्वत को कबूल नहीं करेंगे। कौन सी कुव्वत को? तंजीमी कुव्वत को, दुनियावी कुव्वत को, कलीसियाई कुव्वत को? नहीं, बल्कि रूल कुछ की कुव्वत को। यही तो कलीसिया का पोशीदा मकाम है। जब कलीसिया तलीम याफ्ता मुनादों और बड़ी इमारतों और आला चीजों को अपनाती है बजाय इसके कि पुरानी तर्ज के रूल कुछ याफ्ता मुनादों को अपनाए जो इस मिशन को बेहतर कर सकेंगे। आमीन। ये सच है। आप रूल कुछ की बेदारी कैसे पा सकते हैं जबकि लोग इसे बुझाते हैं और इसे बांधते हैं और इसे डरते हैं? यहीं पर सारी परेशानी पैदा होती है। फलस्ती तुझ पर चढ़ाए, मगर एक बार बरकत उम्मीद हमारे पास है। जब समसून जेल में था, उसको पकड़ने के बाद सबसे पहले उन्होंने उसके साथ क्या किया? उन्होंने पहले उसे बांधा और उन्होंने उसकी कुव्वत उससे छीन ली, क्योंकि वो उसका भेद जान गए थे। अब वो आपका भेद जान चुके हैं। दुनिया आपके भेद को जान चुकी है। आप खवातीन जो अपने बाल कटवाती हैं, ये दुनिया की तरह चलना है। आप मर्द हजरात भी दुनिया की तरह काम करते हैं, गंदे मजाक करते हैं और सिगरेट वगैरह पीते हैं और गंदे लतीफे सुनाते हैं और पड़ोसी की बीवी के साथ घूमते फिरते हैं और इस तरह के काम करते हैं और अपनी नौकरी बचाने के लिए शराब वगैरह पीते और मिलनसार रहते हैं। ये सब दुरुस्त है। इसकी बजाय मैं खाली पेट रहना और किसी चश्मे से पानी पीना पसंद करूंगा, लेकिन खुदा के साथ खालिस और दुरुस्त रहना पसंद करूंगा बजाय अपनी नौकरी बचाने के लिए कोई समझौता करूं। ये दुरुस्त है, ये सच है। खुदा के साथ सच्चे रहें। समसून, फलस्ती तुझ पर चढ़ा, ब्रैनम टैबरनेकल, दुनियादारी तुझ पर आहिस्ता आहिस्ता चढ़ाई। ये क्या है? क्या तूने अपना भेद जाहिर कर दिया है? क्या तूने वो भेद जाहिर कर दिया है जो खुदा ने तुझे कुछ साल पहले दिया था जब तू मिट्टी में पड़ा हुआ रिंग रहा था? क्या तूने समाजी और रस्मी इबादत के साथ उस भेद को खो दिया है? तुझे क्या हो गया है? खुदा यहाँ नीचे आता है और मौजज़ात करता है और ठीक लोगों के दिलों के हाल सामिन के दरमियान बताता है और बीमारों को शिफा और मुसीबत में से निकालता है और अजीब काम और निशान जाहिर करता है और लोग रूल कुछ के वसीला उसके कलाम को सुन सकते हैं। मगर लोग कहते हैं, ठीक है, मेरा ख्याल है ये ठीक है, मगर कभी कभी हमें सुनने में अच्छा लगता है अगर हमें थकाने वाला ना हो। ब्रैनम टैबरनेकल, ये ऐसा ही है। फलस्ती तुझ पर चढ़ाए, پہلے ایسے ہوتا تھا جب کلام کی منادی کی جاتی تھی اور پرانے مقدس لوگوں کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے تھے، وہ سلگتے ہوئے کھڑے ہوتے اور بے چین ہو کر ٹہلنے لگتے تھے، چاہے منہ سے ایک لفظ بھی نہ کہیں مگر دو یا تین مرتبہ ادھر ادھر چل پھر کر پھر بیٹھ جاتے تھے، بس وہ رول کچھ سے بھرے ہوتے تھے اور کلام انہیں آسودہ کرتا تھا۔ انسان صرف روٹی سے جیتا نہ رہے گا بلکہ ہر اس بات سے جو خدا کے منہ سے نکلتی ہے۔ برینم ٹیبرنیکل فلسطین تجھ پر چڑھائے، اے پینٹیکوسٹل فلسطین تجھ پر چڑھائے۔ دراصل فلسطینیوں نے تمہیں تب تھام لیا تھا جب بہت عرصہ پہلے تم نے اپنے آپ کو کس کر منظم کر لیا تھا، یہ اندر نہیں آ سکتے تھے جب تک آپ کم ہو کر ایک پریسبیٹیرین، بیپٹسٹ، میتھوڈسٹ، کیتھولک یا کچھ اور نہ ہوتے۔ آپ کو اس وقت تک باقی سب لوگوں سے کوئی مطلب نہیں ہونا چاہیے تھا۔ بس ہمارے دنوں میں بیداری آئی۔ ہمارے پاس کیسے بیداری ہو سکتی ہے جبکہ بیداری دینے والا اس دنیا سے باندھ دیا گیا ہے؟ آپ اس بات کو ذہن نشین کر لیں، جہاں دنیا داری ہے وہاں خدا نہیں آئے گا۔ آپ جب دنیا سے جڑ جاتے ہیں تب اس سے مکمل کٹ جاتے ہیں۔ جب آپ دنیا داری کو اپنے اندر آہستہ آہستہ آنے دیتے ہیں تب پھر آپ دنیا جیسے کام کرتے ہیں اور پھر ختم ہو جاتے ہیں۔ لیکن جب آپ دنیا داری کی ہر زنجیر کو کاٹ ڈالیں گے اور خدا میں آ جائیں گے اور خدا آپ کو اس وقت تک استعمال کرے گا جب تک دوبارہ ان زنجیروں میں نہ جائیں۔ اپنے اس پیغام کو ختم کرتے ہوئے آج صبح میرے پاس صرف ایک ہی امید ہے۔ جب سمسون بندھا ہوا تھا تو اس کے بالوں کی لٹیں پھر نکلنے لگی۔ خدا نے آخری وقت سے پہلے ہمیں ایک اور کلیسیا دے دی ہے تاکہ روح القدس کی قوت اس میں آ کر روح کو ظاہر کرے اور مرکز 16 کلیسیا میں پورا ہو۔ ایمال 2:4، ایمال 2:38، اور یہ سب کچھ کلیسیا کے ساتھ ظاہر ہو سکے، جیسے رسولوں کے ساتھ معجزات اور نشان ظاہر ہوتے رہے، جیسے اس کے جی اٹھنے کے عظیم نشان اس کے ساتھ رہے۔ جبکہ ہم اسیری میں ہیں تو یقیناً کہیں خدا کی بڑھتی ہوئی فصل عظیم کٹائی کے لیے ہے۔ میرے مسیحی دوست، شاید آج صبح وہ آپ ہی ہوں، کاش آپ کی قوت پھر سے بڑھنا شروع ہو جائے۔ میں دعا کرتا ہوں آج صبح یہ پیغام یہاں سے دوسری جگہوں پر جائے۔ میں بھروسہ رکھتا ہوں کاش یہ آپ کے طور طریقوں میں ایک وٹامن کی طرح آپ کی مدد کر سکے تاکہ آپ روحانی قوت کو دوبارہ اپنی زندگی میں حاصل کر سکیں۔ آئیں ہم اپنے سروں کو جھکاتے ہیں اور دعا کرتے ہیں۔ اے خداوند خدا، آسمان اور زمین کو بنانے والے، ابدی زندگی کے بانی اور ہر ایک اچھی چیز اور روحانی نعمت کے دینے والے، ان الفاظ کو آج صبح لوگوں کے دل میں بو دے اور خداوند اپنا پانی ان پر برسا۔ کاش لوگ ان باتوں کے بارے میں دعا کریں اور دیکھ پائیں کہ دنیا نے کلیسیا کو بیاہ کی پیشکش کر رکھی ہے اور اب آخر میں اس کی قوت کا بیت جان لیا ہے، پوشیدہ مقام کی تلاش کر لی ہے کہ وہ بیت کہاں پڑا ہے اور اسے کاٹ دیا ہے۔ اس نے ایسے لوگوں کا صفایا کر دیا ہے جنہوں نے فتح کا نعرہ مارا تھا اور فتح حاصل کی تھی، لوگوں کو اس طرح مونڈا ہے کہ وہ بدھ کی شام کی عبادت کرنے کی بجائے گھر میں ٹیلی ویژن دیکھتے رہتے ہیں۔ ان کے دلوں سے خوشی چھین لی ہے اور خدا کی محبت کی بجائے ان کے دلوں میں دنیا کی محبت بھر دی ہے۔ ان کو دنیا داری دے دی ہے اور دنیا داری کی خواہشات دے دی ہیں اور انجیل کی منادی کی بجائے تفریح دے دی ہے۔ اگر آج منادی میں دنیاوی شور شرابہ نہ ہو اور الٹی سیدھی حرکتیں کرنے والے نہ ہوں اور اس کو جاری رکھنے والے نہ ہوں تو لوگ پرانے انجیل کے منادوں کو پسند ہی نہیں کرتے جو دلوں کو خوشی کے آنسو دیتے ہیں اور الہی شفا دیتے ہیں، جس سے رسولوں والی نعمتیں دوبارہ کلیسیا میں بحال ہوتی ہیں، جس سے زندہ مسیح ظاہر ہوتا ہے جو آج کا مسیحا ہے۔ جس طرح اسرائیلی اپنے دنیاوی بادشاہوں کے ساتھ بندھے ہوئے تھے اور حقیقی بادشاہ کی پیروی نہ کر سکے، اور حقیقی بادشاہ جب حقیقی بادشاہ آیا تو وہ اس کو پہچان نہ سکے، یہی حالت آج ہے۔ اے خداوند، جب روح القدس کی صورت میں جلال کا بادشاہ ظاہر ہوا ہے تو خداوند لوگ اسے نہیں جانتے، لوگ اسے نہیں پہچانتے۔ وہ اس قدر تنظیمی رسیوں سے جکڑے ہوئے ہیں کہ وہ سب یہ سمجھ نہیں پاتے، کیونکہ یہ سب ان کی تنظیموں سے نہیں آیا۔ خداوند، یہ ابلیس کا کام ہے جو اس نے ان لوگوں کے ساتھ کیا ہے۔ کاش خدا کے سمسون، کاش دل کے سچے لوگ، وہ جو متمنی اور رو رہے ہیں اور درخواست کر رہے ہیں، اس کو تھام لیں۔ کاش وہ تیرے اس کلام کے ساتھ کھڑے رہیں جب تک نئی فصل اگ نہ آئے۔ اے خداوند، جب تک سیون میں دوبارہ خوشی نہ آ جائے اور جب تک لوگوں کا ایک گروہ ایسا نہ آ جائے جو تجھے پہچانے اور سمجھ سکے، جو کہ مسیحا اور اس کی قوت کو پہچان سکے جو دنیا سے چھپا ہوا ہے، اور وہ جو اس کو اب تک نہیں سمجھ پائے۔ خداوند عطا کر کہ وہ اسے سمجھ جائیں۔ ہم یسوع کے نام میں یہ مانگتے ہیں، آمین۔ اب صرف قوت، اے خداوند اب صرف قوت بھیج دے اور ہر ایک کو بپتسمہ دے۔ وہ سب بالا خانہ پر، وہ سب ایک جان تھے۔ تب پاک روح اتر آیا جو وعدہ خداوند نے فرمایا تھا۔ اے خداوند اب صرف قوت بھیج دے، اے خداوند اب صرف قوت بھیج دے، اے خداوند اب صرف قوت بھیج دے اور ہر ایک کو بپتسمہ دے۔ میں اسے کتنی محبت کرتا ہوں، خداوند فقط اپنی قوت بھیج دے۔ وہ بالا خانہ میں تھے اور سب یک دل تھے۔ ان میں سے ساری دنیا داری نکل چکی تھی اور وہ خالی ہو چکے تھے۔ تب روح القدس ان پر آ گیا۔ آج وہ کہتے ہیں آؤ کلیسیا میں شامل ہو جاؤ اور رجسٹر میں اپنا نام درج کراؤ، یا سر جھکا کر یہ کہو میں اقرار کرتا ہوں کہ مسیح خدا کا بیٹا ہے، کھڑے ہو جاؤ۔ ابلیس بھی ایسا ہی کرتا ہے یقیناً۔ جب یہودا نے بپتسمہ لیا تب شیطان نے بھی بپتسمہ لیا۔ جب یہودا باہر نکلا اور انجیل کی منادی کی تو شیطان نے بھی باہر نکل کر انجیل کی منادی کی، لیکن شیطان روح القدس حاصل نہیں کر پایا۔ یہی تو ہے جہاں وہ پوشیدہ قوت ہے جس سے جی اٹھنے کو حقیقت میں جانا اور شک کی گنجائش تک باقی نہ رہی، آمین۔ وہ یہاں موجود ہے، وہی روح القدس جو مسیح کے اوپر تھا آج اس کی کلیسیا پر ہے، وہ کبھی نہیں چھوڑتا۔ میں ہمیشہ تمہارے ساتھ، بلکہ دنیا کے آخر تک تمہارے اندر ہوں گا، میں وہاں ہوں گا۔ یہ کام جو میں کرتا ہوں تم بھی کرو گے، بلکہ ان سے بھی بڑے کام کرو گے، کیونکہ میں اپنے باپ کے پاس جاتا ہوں۔ لیکن دنیا سمجھوتا کرتی ہے اور کہتی ہے اوہ وہ دن تو گزر گئے ہیں۔ فقط ابلیس آپ سے یہی کچھ کروانا چاہتا ہے، وہ آپ سے دل فریبی چاہتا ہے، مگر خدا آپ کو بپتسمہ دینا چاہتا ہے۔ خدا چاہتا ہے کہ آپ، مگر آپ کہتے ہیں اوہ میں یہ سب کچھ کرنے پر ایمان نہیں رکھتا۔ جائیں اور زندگی گزاریں، جائیں اور اپنے گناہوں میں زندگی گزاریں، اپنے گناہوں میں رہیں۔ لیکن جب تک آپ گل سڑ نہ جائیں، جب تک آپ کے اپنے خیالات گل سڑ نہ جائیں، آپ کے اپنے فیشن گل سڑ نہ جائیں اور اثر نو دوبارہ نئی پیدائش حاصل نہ کر لیں، تب یہ نئی زندگی اس زندگی سے بالکل مختلف ہوگی جو زمین میں چلی گئی تھی۔ ایک اناج کا دانہ پیلے رنگ کا زمین میں جاتا ہے مگر سبز بن کر نکل آتا ہے، سخت خول کے ساتھ بویا جاتا ہے، مگر جب اگ کر نکلتا ہے تو وہ نرم و ملائم اور ہوا سے جھول رہا ہوتا ہے۔ ہو جلال ہو، ہللویہ۔ جب ہوا چلنا شروع ہوتی ہے تو پودا کچھ نہیں کر سکتا سوا اپنے آپ کو ہلنے کے لیے نرم کرے۔ تب چھوٹی چھوٹی نرم و ملائم پتیاں خوشی کرتی ہیں اور بڑھتی اور قوت پاتی ہیں۔ یہ پتیاں اس وقت تک نہیں آ سکتی جب تک دانہ زمین میں گر کر گل سڑ نہیں جاتا۔ نہ صرف مرنا بلکہ سڑنا بھی ضروری ہے۔ وہ تو واپس نہیں آ سکتا، مگر اس میں چھپی زندگی واپس آ جاتی ہے۔ جیسا کہ میں نے کچھ پہلے کہا تھا، ایک پیدائش ایک خوفناک چیز ہے، آلودہ، گندی، بلکہ بہت ہی آلودہ ہوتی ہے، مگر اسی میں تو زندگی چھپی ہوئی ہے۔ جب آپ اپنے آپ کو آلودہ سمجھنے لگتے ہیں، جب آپ میتھوڈسٹ، بیپٹسٹ اور پینتیکوسٹل کے مذہبی عقیدوں کو آلودہ سمجھنے لگتے ہیں اور مذہب پر اپنے آپ کو ختم کر دیتے ہیں، تو تب یہ نئی زندگی آنا شروع ہوتی ہے اور پھر روح القدس آپ کو ابھارتا ہے اور آپ خدا کو دیکھتے ہیں۔ ہم کسی جلالی دن میں اس کو دیکھیں گے، کسی دن اس فانی حد نظر سے آگے ہم اسے دیکھیں گے۔ کیا آپ یقین کرتے ہیں؟ کسی دن اس فانی حد نظر کی پہنچ سے آگے کوئی خوش نما کل میرا انتظار کر رہا ہے۔ کل رات جب میں یہاں ایک کونے میں کھڑا تھا تو میں نے سوچا میں ربی لاسن کو دیکھ رہا ہوں۔ مجھے یاد ہے جب وہ یہاں آتے تھے تو ان کے پاس ایک پرانی لاٹھی تھی اور وہ اسے میری گردن پر رکھ کر मुझे मंबर पर लाते थे और फिर हम गीत गाया करते थे, कोई मेरे लिए इंतजार कर रहा है। फिर कुछ इस तरह हुआ जिससे मेरे अंदर से दुनिया निकल गई और मैं मुख्तलिफ तरीके से चीजों को देखने लगा। मैंने उन अमरीकी लोगों के चाल चलन पर बहुत ज्यादा फिक्र करना शुरू कर दिया था। लगातार साल ब साल देख रहा था कि किस तरह मर्द और औरतें अपने आप की जिल्लत कर रहे हैं और गुनाह में बढ़ते जा रहे हैं। एक दो मरतबा तो मैं बहुत परेशान हो गया था और एक मरतबा तो मैं बिल्कुल टूट गया था। और कल ही मैंने खुदा से कहा था, अब मैं मजीद परेशान नहीं होऊंगा, तेरा कलाम कहता है ऐसा ही होगा, लेकिन मैं इसके खिलाफ खड़ा होकर अपनी पूरी कुव्वत से मनादी करता रहूंगा। एक दिन मैं ग्रीन मिल में अपनी उस गार में जो जंगल के बीच में है, सारा दिन दुआ करता रहा। मैं गार के बाहर आकर एक चट्टान पर खड़ा था। ये 3 बजे का वक्त था, सूरज चमक रहा था और मैं उस तरफ देख रहा था और मैं वहाँ खड़ा मशरिक की तरफ देख रहा था और खुदावंद की तारीफ कर रहा था और पहाड़ों की चोटी में से सूरज को दरख्तों के पीछे छुपते देख रहा था और मैं चट्टान के उस पार छोटी पहाड़ियों को देख रहा था और बहुत सारे पत्ते बीच में थे और मुकम्मल खामोशी थी जितनी के हो सकती थी। और मैंने कहा, खुदावंद, एक दिन तूने मूसा को चट्टान की दराड़ में छुपा लिया था और तू उसके पास से गुजरा था क्योंकि वो बहुत अफसरदा था, लेकिन जब तू उसके पास से गुजरा तो उसने कहा किसी इंसान किसी पुष्ट नजर आई है। मैंने कहा, खुदावंद, मुझे भी दराड़ में छुपा ले। उसी वक्त मेरी एक तरफ से हवा झाड़ियों में से घूमती हुई आई, वो ठीक चलती रही और मेरे ऊपर से होती हुई जंगल में नीचे चली गई, मगर मैं वहाँ खड़ा रहा। किसी दिन खुदा जानता है कब और कहाँ इस फानी जिंदगी के पहिए जब तक चल रहे होंगे, तब मैं उस सायून के पहाड़ पर बसने के लिए चला जाऊंगा। किसी दिन इस फानी जिंदगी की पहुंच से दूर, किसी दिन खुदा सिर्फ जानता है कब और कहां क्या होने जा रहा है। वो करीब जा रही है, ये सब छोटे पहिए घूम रहे हैं। इस फानी जिंदगी के पहिए जब तक चल रहे होंगे, तब हम उस सायून के पहाड़ पर बसने के लिए चले जाएंगे। जरा सा झूलना उस प्यारे रथ पर जो मुझे घर ले जाने के लिए आ रहा है, जरा सा झूलना उस प्यारे रथ पर जो मुझे घर ले जाने के लिए आ रहा है। अगर आप वहां होना चाहते हैं तो मेरे साथ हो लें, जो मुझे घर ले जाने आ रहा है। बता दें भाई बोसवर्थ और मेरे सारे दोस्तों को भी फक जो मुझे घर ले जाने आ रहा है। जरा सा झूलना, वो किसी दिन उसमें डुबोकर मुझे उठा लेगा। रथ हर एक दरख्त जल रहा होगा और खुदा के फरिश्ते आतशी रथ में। मुझे घर ले जाने आएंगे। जरा सा झूलना उस प्यारे रथ पर जो मुझे घर ले जाने आ रहा है। इन दिनों में किसी दिन जब मौत का वक्त आएगा, मैं उसे आते देख रहा हूँगा। ये बिल्कुल ठीक है। मैंने यर्दन के पार देखा और क्या देखा, मुझे घर ले जाने के लिए वो आ रहा है, जिस तरह एलिया को यर्दन के पार लेने आया। میرے پیچھے ایک فرشتوں کی شفاف کوائر آ رہی ہے، وہ مجھے گھر لے جانے آ رہے ہیں۔ ذرا سا جھولنا اس پیارے رتھ میں ہے جو مجھے لے جانے کے لیے آ رہا ہے۔ ذرا سا جھولنا اس پیارے رتھ پر جو مجھے لے جانے کے لیے آ رہا ہے۔ خداوند یسوع اس رتھ کا بابرکت کوچوان ہے، وہی سایون کے پرانے جہاز اور زندگی کی کشتی کا کپتان ہے۔ وہ اس عمارت میں اس وقت گھوم رہا ہے اور بات کر رہا ہے، اس کی حضوری یہاں ہے۔ وہی روح القدس جس نے یسوع کو قبر میں سے اٹھا کھڑا کیا یہاں موجود ہے۔ آج انہوں نے کوئی دعائیہ کارڈ جاری نہیں کیے ہیں۔ کیا یہاں کوئی دوسرے شہر سے آیا ہوا شخص ہے جسے میں نہیں جانتا؟ وہ یہاں دعا کے لیے آیا ہے جن کو میں نہیں جانتا۔ وہ اپنے ہاتھ اٹھائے، ہاتھ اٹھا کر مجھے بتائے، میں آپ کو نہیں جانتا۔ آپ جو وہاں ہیں، وہ دوست جو پیچھے مونچھوں والے، کسی نے پیچھے سے ہاتھ اٹھایا تھا۔ جی ہاں، آپ نے ہاتھ اٹھایا تھا۔ ٹھیک ہے، وہاں پیچھے جناب آپ ہیں۔ ٹھیک ہے، آپ سب میرے لیے اجنبی ہیں، لیکن یسوع مسیح اس گلہ کا چرواہا ہے۔ کیا آپ ایمان رکھتے ہیں کہ اس کے وعدے سچے ہیں؟ وہ اپنی کلیسیا کو مسا کر کے کہتا ہے، جو کام میں کرتا ہوں تم بھی کرو گے، بلکہ اس سے بھی بڑے کام کرو گے، کیونکہ میں اپنے باپ کے پاس جاتا ہوں، اس سے بڑے کام۔ کیا آپ ایمان رکھتے ہیں؟ کیا آپ نے اپنا ہاتھ اٹھا کر بتایا تھا کہ آپ مجھے نہیں جانتے؟ کیا آپ ایمان رکھتے ہیں؟ خدا مجھے آپ کے دل کی باتیں بتا سکتا ہے، جس طرح اس عورت نے اس کی پوشاک کو چھوا تھا اور اس نے اسے بتا دیا تھا۔ کیا آپ ایمان رکھتے ہیں کہ وہ سردار کاہن ہے جسے ہم اپنی کمزوری میں چھو سکتے ہیں؟ اگر خدا مجھے آپ کی ساری حالت بتا دے تو کیا آپ مجھے اس کا نبی قبول کریں گے؟ کیا آپ ایمان رکھیں گے کہ اس کی حضوری یہاں ہے، اس لیے وہ اس کی اجازت دے رہا ہے؟ آپ اپنی بیوی کے لیے دعا کر رہے ہیں، اس کے کولے کی ہڈی ٹوٹ گئی ہے اور اپنی جگہ سے ہٹ گئی ہے، یہ سچ ہے۔ اگر یہ سچ ہے تو کھڑے ہو جائیں۔ ٹھیک ہے، جائیے، وہ تندرست ہو چکی ہے۔ آمین۔ آپ کے بارے میں کیا ہے؟ آپ جو وہاں پیچھے بیٹھے ہیں، اس نے ہاتھ اٹھایا تھا، وہ دوست جس کی مونچھیں ہیں، کیا آپ پورے دل سے ایمان رکھتے ہیں؟ کیا آپ ایمان رکھتے ہیں کہ خدا مجھے آپ کی پریشانیاں بتا سکتا ہے؟ کیا آپ ایمان رکھتے ہیں آپ کا بیٹا ٹھیک ہو جائے گا؟ کیا آپ ایمان رکھتے ہیں آپ کے بیٹے کو دماغی فالج ہے؟ یہ سچ ہے، آپ یہاں سے نہیں ہیں بلکہ کینٹکی سے ہیں۔ اگر یہ سچ ہے تو اپنے ہاتھ اٹھائیں۔ میں آپ کو نہیں جانتا۔ کیا جانتا ہوں؟ اپنے ہاتھ اس طرح بلند کریں، ہم ایک دوسرے کو نہیں جانتے، یہ سچ ہے۔ خدا پر بھروسہ رکھیں۔ کیا آپ ایمان رکھتے ہیں؟ جیسے آپ کا ایمان ہے ویسے ہی اپنے بیٹے کو تندرست پائیے، بس اس کو اپنے دل میں بسا لیں۔ اس نے ادھر اپنے ہاتھ اٹھائے تھے، میں ان کو نہیں جانتا۔ کیا آپ تھے؟ ٹھیک ہے جناب، کیا آپ مجھے خدا کا نبی مانتے ہیں؟ کیا آپ پورے دل سے ایمان رکھتے ہیں؟ آپ کو یہاں آنے کی ضرورت نہیں، بس وہیں کھڑے رہیں۔ ٹھیک ہے جناب، آپ کی کیا بیماری ہے؟ آپ کو شوگر ذیابیطس ہے، یہ آپ کے پاؤں کو خراب کر رہی ہے۔ آپ اوہایو سے ہیں، آپ کا نام مسٹر میلر ہے، سلامتی سے گھر جائیے، آپ ٹھیک ہو گئے ہیں، یہ ٹھیک ہے۔ اپنے پورے دل سے ایمان رکھیں، یہ سچ ہے۔ آپ ایمان رکھیں کیونکہ ایمان یہ ہے۔ اگر آپ یقین کریں، خاتون آپ جو وہاں بیٹھی ہیں، کیا آپ نے ہاتھ اٹھایا تھا؟ لمبی خاتون جو چشمہ پہنے ہوئے ہیں، کیا آپ پورے دل سے ایمان رکھتی ہیں؟ کیا آپ ایمان رکھتی ہیں؟ میں خدا کا خادم ہوں، کیا آپ ایسا کریں گی؟ ٹھیک ہے، اگر خدا مجھے آپ کی بیماری بتا دے تو کیا آپ ایمان رکھیں گی؟ آپ دل کی مریض ہیں، یہ سچ ہے۔ اگر یہ سچ ہے تو اپنا ہاتھ اٹھائیں، یہ درست ہے۔ آپ سے اگلی والی خاتون کھڑی ہو جائے، آپ دل کی مریض ہیں مگر آپ کی آنکھوں میں بھی تکلیف ہے، میں جانتا ہوں، اگر آپ ایمان رکھیں گی تو ٹھیک ہو جائیں گی۔ پیچھے کی طرف بیٹھے ہوئے اگلے آدمی کو دل کی تکلیف ہے اور جلد کی بیماری ہے، آپ ایمان رکھتے ہیں کہ خدا آپ کو تندرست کر سکتا ہے؟ جناب آپ ایمان رکھیں، وہاں پیچھے کسی نے اپنا ہاتھ اٹھایا تھا، کیا نہیں؟ آپ کا نام مسٹر شوبرٹ ہے، ٹھیک ہے جناب، ٹھیک ہے، کیا آپ ایمان رکھتے ہیں؟ یہ آپ کی آنکھوں کا مسئلہ ہے، کیا یہ اسی طرح نہیں؟ اور آپ اپنی ماں کے لیے دعا کر رہے ہیں جو باہر بیٹھی ہوئی ہے، اگر یہ سچ ہے تو اپنا ہاتھ بلند کریں۔ ہم اجنبی ہیں، کیا یہ سچ ہے؟ تو پھر آپس میں ہاتھ ملائیں، ایک دوسرے سے ہاتھ ملائیں، ٹھیک ہے، یہ درست ہے۔ اگر آپ ایمان رکھیں گے تو پھر آپ حاصل کر سکتے ہیں۔ زندہ یسوع مسیح اس عمارت میں موجود ہے، یہ وہی ہے۔ اس سے آپ کو کیا ملا ہے؟ کیا آپ نے دنیا کو اپنی ساری قوت نکال لینے دی ہے؟ جلال ہو، میں نئی پیدائش چاہتا ہوں، میں نئی زندگی چاہتا ہوں، مجھے پرواہ نہیں یہ کس طرح آتی ہے، چاہے مجھے کوئی جنونی کہے یا کچھ بھی کہے، مجھے پرواہ نہیں نئی پیدائش کیسی ہے، میں تو حقیقی روح القدس پانا چاہتا ہوں جیسا کہ وہ اس وقت میرے اوپر ہے، میں اسے اپنے اندر چاہتا ہوں، میں دنیا کی سب چیزوں سے بڑھ کر صرف اسی کو چاہتا ہوں۔ آمین۔ کیا آپ ایمان رکھتے ہیں؟ کیا آپ ایمان رکھتے ہیں کہ وہ یہاں موجود ہے؟ تو پھر ایک دوسرے پر ہاتھ رکھیں۔ मुझे एक और बात बताएं, क्या वो नहीं कर सकता? अब ईमान रखें, उस पर ईमान रखें। खुदावन खुदा, आसमान और जमीन के बनाने वाले, अबदी जिंदगी के बानी और तमाम अच्छी नेमतों के बख्शने वाले, तेरा रूल कुछ यहाँ मस्सा दे रहा है। खुदावन, ये इमारत इस तरह लग रही है जैसे आगे पीछे हिल रही है और सांस ले रही है। खुदावन, क्यों ये लोग समझ नहीं पाते? क्या लोग दुनिया से इस कदर जुड़ चुके हैं और ठंडे और रूखे और रस्मी हो चुके हैं कि मजीद वो तुझे जान ही नहीं पाते? खुदावन, खुदा होने दे कि तेरी कुवत यहाँ हर एक पर, हर बीमार शख्स को शिफा दे, हर गुनाहगार को निजात दे और खुदा को जलाल मिले। मैं ये दुआ खुदा के बेटे यीशु मसीह के वसीले मांगता हूँ, आमीन। क्या आप इस पर ईमान रखते हैं? अपने हाथों को बुलंद करें। क्या आप शिफा पाना चाहते हैं? खुदा आपको बरकत दे। अब जाएं और इसे हासिल करें। जैसा आपका ईमान है वैसा ही आपके लिए हो जाएगा। मैं दूसरों के बारे में रोयाएं देख रहा हूँ, ये सच है। आज रात फिर मुझे इबादत के लिए आना है। अगर आप अब ईमान नहीं रख रहे तो फिर आप कभी भी ईमान नहीं रखेंगे, ये ठीक है। यीशु ने जब एक बार बताया तो उन्होंने कहा, तू ही है, हम जानते हैं, जब मसीहा आएगा तो वो हमें ये बातें बताएगा। औरत ने कहा, मैं जानती हूँ, जब मसीहा आएगा तो वो ये करेगा, लेकिन तू कौन है? उसने कहा, मैं वही हूँ। फिर वो औरत शहर में दौड़ गई और कहा, आओ देखो, यहाँ एक आदमी है जिसने मुझे बता दिया है कि मैं कौन हूँ और मैंने क्या क्या किया है। क्या ये मसीहा नहीं? उसने कहा था, आखिरी दिनों में फिर ऐसा ही होगा। कलीसिया कलाम के साथ खड़ी होगी और कलाम की सच्चाई की मुनादी की जाएगी। वो खुदा के सारे हुक्मों को मानेगी और वो दुनिया से नहीं जुड़ेगी, और उसमें मैं चलूं फिरूंगा और ऐसे ही काम करूंगा। लेकिन उसने कहा, आखिरी दिनों में लोग जिद्दी, मगरूर, खुदा की निस्बत ऐशो इशरत को ज्यादा दोष रखने वाले, तोहमत लगाने वाले होंगे, नेकी के दुश्मन और दीनदारी की वजह रखेंगे, बहुत मजबूत चर्चिस में जाने वाले। वो दीनदारी की वजह तो रखेंगे मगर उसके असर को कबूल नहीं करेंगे। ऐसों से किनारा करना। आप लोगों के बारे में, जब आप यहाँ कलीसिया में आए थे तो उसने कुछ बुलाया था मगर अब रोया जा चुकी है। अगर जो मैंने कहा था ये सच है और मैं आपको पहले से नहीं जानता था, तो अपने हाथ बुलंद करें, जो हमेशा होता है कलीसिया में, हर शख्स अपने हाथ बुलंद करे, ये ठीक है, समझे? मैं इन्हें नहीं जानता, कभी इन्हें नहीं देखा, मगर रूल कुछ यहाँ है, वो इन्हें जानता है। क्या आप नहीं समझते कि ये मैं नहीं हूँ? सुने, अगर वो इसका मुझ पर भरोसा करता है तो वो फिर इसका भी मुझ पर भरोसा करेगा कि मैं कलाम की सच्चाई बयान करता हूँ, क्योंकि सच्चाई तो सिर्फ कलाम से आती है। तौबा करो और तुम में से हर एक अपने गुनाहों की माफी के लिए यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा ले, तो तुम रूल कुछ इनाम में पाओगे, क्योंकि ये वादा तुम, तुम्हारी औलाद और उन सब दूर के लोगों से भी है जिन्हें खुदावंद हमारा खुदा बुलाएगा। क्या आप ईमान रखते हैं? अब यहाँ कुछ ही लम्हों में बपतिस्मे दिए जाएंगे। आए, अपने सरों को झुकाएं। मैं पास्टर साहब से कहूंगा दुआ करें। जब तक वो बपतिस्मे की तैयारी करते हैं, मेरा ख्याल है इसके बाद बपतिस्मे की इबादत होगी, ठीक है।